نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وہ لوگ جو رسول نبی جو امی تھے ان کا تذکرہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا کہ اس نبی کا آنا یا ان کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں, تورات اور انجیل میں پہلے سے ان کے تذکرے موجود تھے. گویا کہ آج بھی جو اپنے دین کو جانتے ہیں جیوز اور کرسچین, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دل سے مانتے ہیں. یہ بات تو ان کے لیے ہے, امت مسلمہ کے لیے کیا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا. نمبر ایک, یا مرہم بالمعروف, وہ ان کو معروف کا حکم دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے, پوری زندگی آپ کی اس بات کی گواہی دیتی ہوئی دیکھتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی اس چیز پہ کھپا دی کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے. معروف کیا ہوتا ہے؟ عرف سے, عین رافع عربی کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے, تعارف کا لفظ بھی اسی میں, آپ سے معروف ہیں, عرف پہچان کو کہتے ہیں. تعارف کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو پہچاننا. معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں جانی پہچانی, عقل بھی جس کو مانے, شریعت بھی مانے, معاشرہ بھی مانے. مثلا سچ بولنا. سچ بولنا کیا ہے؟ عقل مانتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے؟ مانتی ہے. اسلامی شریعت مانتی ہے اس کو؟ بالکل مانتی ہے. کیا کسی بے دین سے بے دین شخص, کافر فاسق یا اپنے آپ کو ایون ایتھیس کہنے والے شخص سے آپ پوچھئے, یہ بتاؤ کہ سچ بولنا اچھی بات ہے کہ بری؟ کیا کہے گا؟ اچھی بات. یہی معروف ہے. یعنی معروف کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, فطرت ہی گواہی دیتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے کہ نہیں. تو معروف ہر وہ چیز جس کو انسان کا دین مذہب بھی سچ کہے, اچھا کہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عقل معاشرہ سوسائٹی بھی اچھا کہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ آپ لوگوں کو منکر سے روکتے تھے. ہمارے ہاں یہ ٹرم بڑی عام ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام پہ. منکر کیا ہے؟ نون کاف رو, نکیرہ, انکار کرنا, اسم نکرہ, اردو میں ہم سنتے آتے ہیں. تو منکر کیا ہے؟ ہر وہ چیز یا ہر وہ کام جس کا انکار انسان کی عقل بھی کرے, شریعت بھی کرے, اور معاشرہ بھی کرے. مثلا وہی مثال شراب کی. شراب پینے کے بارے میں کیا صرف اسلام کہتا ہے کہ شراب بری چیز ہے؟ عقل بھی کہتی ہے کہ غلط ہے, معاشرہ بھی کہتا ہے کہ غلط ہے. یعنی 19th century جب شروع ہوئی تو تقریباً 10 سال تک امریکہ میں تحریک کے طور پر شراب کو بین کرنے کی کوششیں کی گئیں, کیونکہ وہ اس کے نقصانات اور اس کی خرابیوں کو دیکھ رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ سالوں کی کوشش کے بعد آخر انہوں نے گیو اپ کیا اور نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو سستا بیچنے والے جو تھے وہ اس سے نہیں بچ سکے. جبکہ اس کے برعکس جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, لیکن جو ہی حکم آتا گیا تدریجن تو شراب کے پیالے ہاتھ سے چھٹ گئے. تو فرق ہوا دونوں چیزوں کا. اللہ کے نبی نے سوسائٹی میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روکنے میں مدد کی. ٹھیک ہے, تیسری چیز پہ چلیے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, وہ ان پر حلال چیزیں, جو پاک چیزیں ان کو حلال کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں تیسرا کام کیا تھا کہ حلال چیزیں, طیب پاک صاف ستھری چیزیں ان کو اپنے حلال کیا. ہوا کیا تھا کہ جس معاشرے میں آپ بھیجے گئے تھے وہاں کے مذہبی لوگ, خاص طور پہ یہود, جن کے اندر بہت زیادہ دین کے نام پہ پرہیزگاری کا کانسیپٹ تھا, انہوں نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی حرام کی ہوئی تھیں. اسی طرح مکہ میں لوگ بعض دفعہ باپ دادا کے نام پہ کسی جانور پہ بیٹھنا نہیں ہے, اس کی پشت حرام ہے, یہ کھانا عورتیں نہ کھائیں, مرد نہ کھائیں. اللہ تعالیٰ نام میں اس کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. قصہ مختصر کے حلال چیزوں کو بھی لوگ بس ایسے ہی حرام کر دیتے ہیں, کچھ تقویٰ کے نام پہ, کچھ تقلید کے نام پہ. اللہ کے نبی نے آ کے ایک ایک چیز کو اس کی جگہ پہ کیا. اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, بہت ساری ناپاک اور گندی چیزوں کو لوگوں نے حلال کیا ہوا تھا, تو اللہ کے نبی نے اس کو हराम करवाया, जैसे शराब है, जुआ है, गैम्बलिंग थी, सूद था, जिना थी, बदकारी, माशरे पाक हुए। अगला काम, वयदउ अनहुम इसराहुम, उनके ऊपर से बोझ उतार दिए। ये कौन से बोझ थे? रस्मों रिवाज के बोझ, जीने की रस्में, मरने की रस्में, बेटा पैदा हुआ तो ये ससुराल में ये भेजो, शिवरात में ये होगा। यानी माशरे में इस तरह के तोमार लग जाते हैं बाज दफा के, लोग फिर आम फराइज तक पूरे नहीं करते। इस वक्त तफसीर नहीं, लेकिन अगर आप इन सब की बाद में डिटेल सुनना चाहें तो आप सबीलुल जन्ना के लिंक से सूरत अल आराफ की आयत नंबर 157 को सुन लें। इस वक्त हम उस मौजू पे आ रहे हैं जिसके ऊपर हम सब लेके अपने आप को चलेंगे कि अल्लाह के नबी ने मुख्तसर से अरसे में क्या कुछ कर दिया। लोगों को मारूफ का हुक्म दिया, मुनकर गलत चीज़ों से रोका, तैयब चीज़ों को हलाल किया जो कि लोगों ने कई सालों से हराम की हुई थी, और खबीस चीज़ें, गंदी चीज़ें जो थी वो लोगों में आम थी उसको हराम कर दिया। और इसी तरह लोगों के वो बोझ, इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तौक जो उनकी गर्दनों में थे उनसे उनको पाक कर दिया। यहाँ पे रुक के देखिए, यानी उस सोसाइटी में लोगों ने कई चीज़ें अपनी गले में अजीबोगरीब डाली हुई थी, तो अल्लाह के नबी के ज़रिए इस्लाम का एक कितना खूबसूरत ये एक तोहफा है इंसानियत को कि सोसाइटी को उसके बिल्कुल असल रूप पे रखा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में ये काम करके गए, और अगर आप सीरत पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे यकीनन, पढ़ाते भी होंगे कई जगह पे, आपने इसके ऊपर से सेशंस लिए होंगे। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल जब आता है तो कोई ना कोई सीरीज़ नई शुरू करके हम हर साल 2-3 बुक्स इस तरह की पढ़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसको वेबसाइट पे भी डाल दें। तो जिसमें पिछले साल नबी सल्लम की मतरूक सुन्नतों पे मैंने एक सेशन दिया था, हर दिन कहीं थोड़ी छोटी छोटी सुन्नतें कि वो कौन सी सुन्नतें हैं जो कि अब तर्क हो चुकी हैं, जिस पे आज अमल नहीं होता, उसमें आपको इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने मुआशरे को मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया। अल्लाह के नबी ने तो कर दिया, क्या आज भी उम्मत मुस्लिमा पाक है? क्या आज के मुसलमान इन सारी चीज़ों में उसी तरह अमल कर रहे हैं जैसे अल्लाह के नबी ने दिया? मारूफ का हुक्म हम करते हैं, मुनकर से रोकते हैं, क्या लोगों के लिए तैयब चीज़ें हलाल करते हैं जो लोगों ने ऐसे ही अटकलों के नाम पे हराम की भी हैं? क्या हम खबीस चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकाल सके? क्या वो बोझ और तौक जो हमने बाप दादा के नाम और रस्मों पे अपने गलों में डाले कर चुके? तो इसका जवाब हम सबको नहीं में दिखता। आज हम बात करेंगे बींग अ नेशन, उम्मते मुस्लिमा का फ़र्द होने के नाते ये सबसे अल्टीमेट गोल है हमारा, क्योंकि हम दुनिया में उम्मते वसत बनकर आए, लेकिन उससे नीचे बड़ी नेशन बनने के नाते अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, उससे नीचे वाले लेवल पे ले लीजिए, तो ज़ाहिर है कि मुसलमान होने के बाद जिस चीज़ पे हम सबको फ़ख्र हो सकता है वो पाकिस्तानी होना है। बींग अ पाकिस्तानी, उम्मते पाकिस्तान का या पाकिस्तान के नेशनल होने की वजह से अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, उससे नीचे ले लीजिए, तो उसके बाद तीसरी बांट जो है वो हमारी दीन के काम पे या इस्लाम के नाम पे हम कोई काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो कामयाबी से होते होते इसको बिल्कुल छोटे दर्जे पे ले आइए कि अपनी ज़ाती इनफरादी कामयाबी, कि मैं किसी के लिए कुछ ना करूँ, कम अज़ कम मुझे अपने लिए तो कुछ करना है। तो आइए हम वो चंद बुनियादी चीज़ें देखते हैं, 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जो किसी भी गिरोह को कामयाब करते हैं। आयत पूरी कर लेते हैं ताकि आयत का हुसन भी कायम रहे कि नबी तो ये सब कर गए, अब तुम क्या करो? फल्लज़ीना आमनू बिही, पस वो लोग जो ईमान लाए उस पर, किस पर? उस नबी पर। व अज़रूहू, और जिन्होंने उसको तकवीयत पहुंचाई, स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन। व नसरूहू, और उनकी मदद की। और व तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और पैरवी की उन्होंने उस नूर की, उस रोशनी की जो उसके साथ नाजिल किया गया। मुराद इससे कुरान पाक है, फरमाया उलाएक हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं फलाह पाने वाले। कामयाबी का एक एजेंडा है। आज हम कामयाब क्यों नहीं रहे, या जब भी हम किसी चीज़ में नाकाम होते हैं तो उसकी वजह क्या है? आज थोड़ी सी इस पर हम बात करते हैं। इनफरादी तौर पे अगर आप देखें तो उम्मते मुस्लिमा में बहुत सारे नेक लोग भी हैं, और आपको इन सब चीज़ों पे अमल करते हुए दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही के दौर की शख्सियत आपको इमाम हुसैन के नाम पे भी दिखेगी, नासिरुद्दीन अल्बानी के तौर पे एक आपको बहुत बड़ी हस्ती दिखेगी, और अब्दुल्ला बिन बास, ये सब का रिसेंटली इंतकाल हुआ इसीलिए इनके नाम मेरी ज़ुबान पे आ गए, वरना हज़ारों की तादाद में इनफरादी तौर पे मुसलमान मौजूद हैं। जो कामयाब जिंदगियां बसर कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ दीजिए, तहज्जुद और इसी के साथ नवाफिल का एहतमाम भी करते हैं। लेकिन अगर बींग अ नेशन, बींग अ उम्मत देखें तो आज हम सब कामयाब नहीं दिखते। आज हम मुसलमान जब दीन के नाम पे भी कोई काम करते हैं तो एक ख़ास जगह पे आके हमारी ग्रोथ क्यों रुक जाती है, उसकी चंद वजूहात हम देखेंगे। और ये सब देखने का मकसद क्या है कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं। किस दिन? यौमुत तगाबुन। तो पहली चीज़ जो किसी भी गिरोह को किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, किसी मुल्क के नाम पर, मिल्लत के नाम पे ज़रूरी है अपने अंदर लानी, वो है कि उनका एक ख़ास गोल हो, मकसद पे नजर। जब तक कोई मकसद वाजे नहीं होता ना, हम बात नहीं करते, क्योंकि हमारा सबका अब ज्यादा दीन से ताल्लुक है ना। खास तौर पे हम लोग काम भी अल्लाह के तौफीक और हुक्म से दरसो तदरीस का ही करते हैं, तो हम इसी को इस वक्त अपने जहन में आइडियलाइज कर लेते हैं कि मकसद क्या है इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का। आप अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो आप फील करेंगे एक चीज, और वो क्या है कि बाज दफा हम दीन का काम भी कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका मकसद पता नहीं होता। मैंने एक मौके पे कुछ साथियों से ऐसी बातें की, जब पूछने में बात आती है तो उसका खुलासा क्या निकलता है कि आप ये बताइए कि आप इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं। मैंने एक महफिल में सिस्टर्स थी, इसी तरह का दर्स था जैसे आज आपके साथ है, तो मैंने एक कहा सिस्टर्स आप यहाँ से शुरू करके ये बताएं कि सुबह से लेके अभी तक आपने क्या किया इस्लाम के लिए। अच्छा, अब जब मेरी, पहले तो मेरा सवाल बड़ा अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, क्योंकि लोग जब आते हैं वो सिर्फ सुनने के मूड में आते हैं, सुनाना नहीं चाहते, हालांकि मैं बोल ही नहीं सकती जब तक आगे से आप ना बोले। तो किस्सा मुख्तसर, हमारी बहनों ने जो बारी बारी बताया ना, सुबह से शुरू हुई और हमारा असर और मगरिब के बीच में दरसा, यानी मोस्ट ऑफ पार्ट जो दिन का था गुजर चुका था। तो उन्होंने हर एक ने यही, जो अमूमन 90% लोगों की रूटीन है कि फजर से थोड़ा पहले उठे, फिर वजू किया, नमाज पढ़ी, जिक्र अजकार, दुआएं, फिर बच्चों को भेजा, ये फजर, यानी एक बिल्कुल रूटीन, एक अच्छी मोमिना औरत की जो जिंदगी है वो है। जब 2, 4, 6, 7 लोग बता चुके हैं तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर आप मेरा सवाल नहीं समझे, ये जो कुछ भी आपने किया है ये तो आपने अपने लिए किया। आप नमाज ना पढ़ते तो आप इस्लाम से निकल जाते, आप जिक्र अजकार ना करते तो आप अल्लाह के तहफ्फुज़ से निकलते। मेरा सवाल ये है कि आपने उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या किया, इस्लाम के लिए क्या किया। अब उनको समझ आया कि बात कुछ और है। तो गौर कीजिएगा कि आज हम में से बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि बीइंग अ नेशन हमारा काम क्या है। तो आज हम इस नेशन के इस मकसद पे थोड़ी सी नज़र रख के देखें तो हमारा दुनिया में आने या भेजे जाने का मकसद क्या है। कजाली का जाल ना को मम्मद वसत, उम्मत वसत बनाया। हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल, आसान लफ्ज़ों में बोलूँगी ताकि आप मेरी बात को अखज़ कर सके और फिर आप उसको कल अप्लाई भी कर सके अपनी ज़िंदगी में, कि हम दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा दें। ये मकसद है। जो अभी मुसलमान नहीं हुए उनको करनी है दावा, दावे नहीं करने, आज हम दावे बहुत करते हैं, दावा नहीं करते। अरबी उर्दू का थोड़ा सा लफ्ज़ों के अंदर लिखने में फ़र्क आ जाता है, क्लेम्स तो बहुत करते हैं लेकिन हम असल में दीन की नश्तोशात नहीं कर पाते। मकसद क्या है हमारा कि जो लोग अभी मुसलमान नहीं हुए उन तक कम से कम एक हुज्जत तमाम हो जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर जो है वो उनको इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। मुसलमानों के लिए हमारा गोल क्या होना चाहिए कि उनको अपने इस्लाम का ना सिर्फ ये कि मालूमात की हद तक पता हो बल्कि वो उनको उस पे ऊपर अमल भी करवाएं और जिंदगी के अंदर ये जो 4, 6 काम हम लोग आज अपने इर्द गिर्द देखते हैं इसको खत्म करें, जिसका तस्करा ऊपर गुजरा। अगर हम सब इसको गोल बनाएं, सब, आप सोचिए कि आप पाकिस्तान कह लें, सऊदी अरब कह लें, तुर्की कह लें, चाइना कह लें, पूरी दुनिया को आप सोचिए, फुटबॉल है जैसे ये माइक रखा हुआ है, ये पूरी दुनिया वैसे भी एक ग्लोब है ना, हम किस भी मुल्क में जाते हैं उस मुल्क में किसका कानून चलता है, उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उनका, रूल्स एंड लॉज उनके, और सारा काम करने का तरीक़ेकार उनका, करेंसी तक उनकी, ऐसे ही चलता है ना। बस आप इस वक्त ये सोचें कि हम स्कॉटलैंड में बैठे हैं, क्या स्कॉटलैंड में रहते हुए हम यहाँ टर्की का लॉ ला सकते हैं? और अगर कोई यहाँ ज़बरदस्ती टर्किश लॉ अप्लाई करने की कोशिश करे तो स्कॉटिश हुकूमत क्या करेगी, या जो बहुत ज़्यादा स्कॉटलैंड से प्यार करने लगे वो क्या करेंगे? अटमोस्ट कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से हटाएं, उनकी चीज़ें निकालें और इसकी जगह स्कॉटिश लॉ को लेके आए। बस ये काम मैं और आपने इस्लाम और अल्लाह के लिए करना है। पूरी दुनिया अल्लाह की है, लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्ज़। पूरी दुनिया में जो गोल है वो ये कि इधर एक ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लगाओ। अल्लाह की दुनिया ना, ये जो दुनिया में हम चंद कुफर के नाम पर हुकूमतें देखते हैं ना, ये कहले गासिबाना कब्जा है। ये वही है जो मैंने अभी आपको मिसाल दी कि तुर्की के कुछ लोग आके स्कॉटलैंड की हुकूमत को फ्लॉप करें और यहाँ के जगह जगह तुर्की के झंडे लगा दें। मिसाल के लिए सिर्फ बता रही हूँ। तो हम उसको हटाएंगे ना। इस दुनिया में आज जहाँ भी कुफर और इल्हाद दिख रहा है ना, असल में अल्लाह के इस मुल्क में ज़बरदस्ती का कब्जा है। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि लियुसखिरहु अलदीन कुल्लिही, अल्लाह का दीन सारी दुनिया में आम हो जाए। अब मैं और आप लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा मुहिब इस्लाम है, मुहिब वतन का नाम तो हम सुनते हैं और मुहिब प्यार करने वाला हुब से है, लेकिन हम सब इस वक्त सोचते हैं कि हम मुहिब इस्लाम कह लें या वल्लज़ीन आमनु अशद्द हुब्बल लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं। हम दुनिया में देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि लोग कुफर के सपोर्टर हैं बल्कि इस्लाम के मुखालिफ हैं। तो उम्मते मुस्लिमा को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस मकसद पे नज़र रखे कि हमने दुनिया में इस्लाम का पैगाम आम करना। अब ये कैसे होगा, उसके लिए कुछ और खूबियाँ जब ये सातों चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे तो आगे चल के इस पे ओवरऑल अमूमी तौर पे बात कर लेंगे। मैं आपको इस वक्त दर्स दे रही हूँ किस बात पे, कामयाबी। ये मैं दर्स कामयाबी पे आज दूँ, शाम को उठूँ तो बच्चों की तरबियत पे दूँ, कल सुबह मुझसे कोई कहे कि आप हमें ज़रा ज़ुबान की खराबियों पे बात बताएं, अगले वीक कतर में जाके मैं नामे अमाल पे बात कर दूँ, 2 दिन बाद दुबई में जाके मैं किसी और मौजू पे बात करूँ, मैं हक रखती हूँ। लेकिन हर दर्स हर स्पीच करते हुए मेरी नज़र में गोल क्या होना चाहिए कि मैंने आप सब साथियों के अंदर ये अच्छी चीज़ें लाकर आपको उम्मते मुस्लिमा का एक फाल फर्द बनाकर आप सब के ज़रिए इस्लाम को गालिब करना है। बातों से इस्लाम कभी गालिब नहीं आया। जब लोग अमल करने लग जाते हैं ना इस्लाम पे, तो बातों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी ने कभी जाके लंबी चौड़ी बातें नहीं की थी। लोग मुसलमान होने का मतलब समझते थे बामल होना। तो मकसद ये बनाना है कि दीन को फैलाना है। मैं और आप अगर इस काम में हिस्सेदार बन जाए तो मैं कहती हूँ सर सजदे से उठे ही ना। आपका दिल चाहेगा कि आप घोड़े की तरह सर हर वक्त झुकाएं, सीधा ना खड़े कि अल्लाह तुम मुझे इस मकसद के अंदर शामिल करके हिस्सेदार बना ले। कितनी बड़ी बात है। बस आप देखिए मिसाल देने के लिए कि जैसे अब पाकिस्तान की तहरीक जब चली, 2-3 नाम आम है ना, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, रहमतुल्ला चौधरी, कुछ इस तरह के। अब जब पाकिस्तान की हिस्ट्री बोली जाती है ये नाम सामने आते हैं ना, एक ऑनर मिल गया ना, एहसास मिल गया, किसी ने एक काम बनाया वो चले गए लेकिन उनका नाम आ गया। तो मेरे और आपके लिए सबसे पहले अपने लिए खुशकिस्मती की ये चीज़ है कि अल्लाह ताला मुझे इसमें हिस्सेदार करे। आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त हिस्सेदार इसमें कैसे बनूंगी, मैं तकरीर कर रही हूँ ये मेरा काम है, हालांकि आप बहुत सारे लोगों को पीछे कर रहे हैं। वो कौन है? सबसे पहले तो आप सब साथी हैं, मैं बोल रही हूँ, और अगर आप ही ना सुने तो क्या मैं बोल सकती हूँ? जिन्होंने इख्तमाम किया, जो वॉलंटियर्स हैं, कितने गैर महसूस तरीके से लोग पीछे हैं ना, कि जिन्होंने मुझे बोलने के लिए तैयार किया और आपके साथ बात पहुंच रही है। तो दूसरी चीज़ जो इसमें से निकलेगी ना, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, और वो क्या है कि इस मकसद को हासिल करना है हमने कि हम मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया में इस्लाम का मैसेज आम करें। किसी नाम, किसी स्लोगन, किसी से भी आए, इससे हमें कोई केयर नहीं। हमारा गोल क्या है कि अल्लाह के बंदे आग से बच जाए, अल्लाह की नाराज़गी का जरिया ना बने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की कितनी तड़प थी कि आप एक यहूदी बच्चे की इयादत के लिए गए जो आपकी खिदमत करता था, बिल्कुल मौत के करीब था वो बच्चा, और अल्लाह के नबी ने कहा कि या गुलाम, ए बच्चे, अस्लिम, इस्लाम कबूल कर। उसने अपने बाप को देखा जो यहूदी था, कि अब्बा जी क्या करूँ? बाप ने कहा कि अबुल कासम की बात मान लो, और उस बच्चे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके चंद लम्हों के बाद उसके दम निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का कफन दफन इस्लाम के मुताबिक किया, और उसके बाद आप जब वहां से निकले तो मदीने की गलियों में आप खुशी से पुकारे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस जात की तारीफ है जिसने इस बच्चे को आग का ईंधन बनने से बचा लिया। ये मकसद मेरा और आपका बन जाए, किसी भी बंदे को अल्लाह से दूर, इस्लाम से दूर, अमल से दूर देख के हम खुश ना, हम रोएं, ऐसी महफिलों से हम हंसते खाते पीते ना आए कि जहां अल्लाह के हुक्म टूटे, वो हमारे रिश्तेदारों की शादियां भी हो सकती हैं। हम सब ने भी दुनिया में यनहाकुम अनिल मुनकर वाला काम करना है, यनहाकुम अनिल मुनकर, बुराइयों को दूर करना है। इससे मोमिन का एक मिजाज बनता है, और वो मिजाज क्या है कि वो गलत चीज में खुश नहीं रहता। आप देखेंगे इससे हमारे कितने माशरती मसाइल हल हो जाएंगे। इस काम को करने के लिए जो दूसरी चीज है वो है टीम वर्क। कोई बड़ा काम तनहा नहीं होता, याद रखिएगा। बल्कि आज इसी पे ज्यादा बात करूंगी, क्योंकि आज उम्मते मुस्लिमा में मसला क्या है, इनफरादी तौर पे मैं अपनी तरफ उंगली कर रही हूँ मिसाल देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पे ऐसे हालात नहीं है। इनफरादी तौर पे हर बंदा दीन के काम को कहता है बस मैं करूंगा, वन मैन शो, हर काम मेरे हाथ से होगा और जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चार छह चीजें शुरू से चल रही हैं, ये सब करने का दर्द रखने वाले बहुत लोग हैं। कोई भी गुनाह के काम होते देख के खुश नहीं होता, शराबें पीते, गलत काम करते लोगों को खुश नहीं होता, लेकिन काम फिर क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ नबी सल्लम की दुनिया से जाने के 10 साल के बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी की वफात तक, तबूक के मुकाम तक इस्लाम पहुंच चुका है। आखिरी जंग थी जो आपके अपनी जिंदगी में हुई, खैबर फतह हो गया, मुल्क शाम की हदों पे इस्लाम पहुंच गया। आप कह लें कि अरब का खित्ता मुसलमान हो गया, और अल्लाह ताला का हुक्म आया और आप अल्लाह के पास चले गए। 2 साल बाद में अबू बकर सिद्दीक को मिले सिर्फ। आप कह लें अबू बकर को तो क्या मिला, फितने मिले, क्योंकि लीडर्स के सामने जो सब ठीक लग रहा होता है उनके अपनी जगह से हटते ही वो पूरी बिल्डिंग की तरह गिर पड़ता है। हजरत आयशा कहती हैं कि इस तरह के पहाड़ और सदमे मेरे बाप पे टूटे हैं अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद, कि किसी पहाड़ पे गुजरते तो वो चूर चूर हो जाता। कोई मुर्तद हो रहा है, कोई जिहाद का इनकार कर रहा है, कोई ज़कात देने से रुक रहा है, कोई लश्कर इसामा का हिस्सा बनने से रुक रहा है, कई फितने मुसैलमा के साहब के फितने कि एक दो ऐसे मुकाम आए कि अबू बकर सिर्फ तनहा रह गए। सब सहाबा की राय एक तरफ थी और अबू बकर की राय एक थी। अब उस पर जाऊँगी तो वक्त आगे चला जाएगा, लेकिन अबू बकर जो मेरे मुकाबला करते रहे। 2 साल गुजर गए, अल्लाह के पास चले गए। हजरत उमर फारूक का दौर है, 10 साल उमर फारूक खलीफा बने रहे। सिर्फ इस 10 साल में आप कह लें, इस वक्त जो मेरी आपकी जिंदगी है, पीछे अगर आप खुद सोचे अपने ऊपर लें, इस वक्त मैं आप हम सबको मैं आपको दावत देती हूँ, भला आज से पीछे आपने, आज से 10 साल, 15, 20, जब से आपका शौर शुरू हुआ है, आपने कितने मुल्कों को मुसलमान होते देखा है? मुझे तो याद है, तो एक सिर्फ ये रशिया जब टूटा था तो उसमें से उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के नाम की छोटी छोटी रियासतें निकली, दैट्स इट। और आप में से जो 30, 40, 50 के करीब होंगे, शायद उनकी भी ये कहानी होगी। क्यों आज हम मुसलमान दुनिया में बिलियंस में, इस वक्त 3-4 बिलियन, इस वक्त 100 कुछ से ज्यादा मुसलमान मुल्क है, लेकिन क्या वजह है कि दूसरे नॉन मुस्लिम मुल्क मुसलमान नहीं हो रहे? बात वाजह हो रही है, पीछे जाते जाए कोई, बल्कि जुल्म की हद यह है कि मुसलमानों के ऊपर कहीं जाहिरी और कहीं छुपा हुआ काफिरों के गलबा होता आ रहा है। पॉलिसीज उनकी, कानून उनके, मोहरे हम बने हुए, उसकी वजह क्या है कि आज उम्मते मुस्लिमा में टीम वर्क नहीं है। हमें मकसद प्यारा, और ये चीज़ें एक से दूसरे में आएंगी, चेन रिएक्शन है। जब मकसद एक होता है तो लोग उस मकसद को पाने के लिए एक टीम बनते हैं। इनफरादी तौर पे मैं दीन का काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, दैट्स इट, बस ख़त्म हो गया काम। मिल क्या रहा है उसके बाद? मुझे सवाब मिल रहा है, आने वालों को सवाब मिल रहा है, उम्मत की हालत कहाँ बदल रही है? ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह हमारी कोशिशों को ज़ाया करता है, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह के पास अजर नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहती कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उम्मत को। जारी बात है, जितना उम्मत के अंदर दीन पे अमल बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला दुश्मनों पे गलबा डालता है, ये तो होता ही है, कॉल से बदलता है। लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो इज्तमाही काम की ज़रूरत है। जब मकसद पे नज़र रखे बगैर हम दीन का काम करते हैं ना, तो सिर्फ ज़ाती नेकियां इधर जा रहे हैं, ये क्या कर रही है बाजी? मिसाल है कि एक सिस्टर है, सिस्टर कौसर का नाम ले लेते हैं, कोई भी हो, जिसे आपके उस बाजी कौसर की क्लास में जाते हैं, वो क्या कराती हैं? ग्रामर कराती हैं। मेरा दिल हिल गया, अल्लाह की बना ग्रामर पढ़ते हैं? मैंने कहा आप तजवीद, कुरान, तफसीर ये भी नहीं? कहती सिर्फ ग्रामर पढ़ते, पहले ग्रामर पढ़ेंगे फिर फ़ायदा होगा। इधर कोई है वो कहता है बस हम 4 साल से तजवीद सीख रहे हैं, कोई इधर है कोई कुछ, भाई अल्लाह के बंदो, तुम ये बताओ कि तुम ग्रामर की ऐसे 20 100 ज़ी तक पढ़ जाओगे और तुम नमाज ही नहीं अगर अभी पढ़ते, तुम्हारा हाल हुलिया नहीं बदला, तुम्हारे घर सूद से पाक नहीं हुए, और इसी में अगर अल्लाह के पास जाने का वक्त हो गया तो क्या होगा? बात वाज़ेह। आज बिखरी हुई कोशिशें, जिसको आप कहते हैं ना, इन्नसा यकुम लशत्ता, स्कैटर्ड कोशिशें। इस्लाम का मिजाज इनफरादियत का नहीं है, लिख लीजिए इज्तमाइयत। अगर आज के दौर में मुझे कुछ काम करना है ना दीन का, तो मुझे इज्तमाइयत के लिए काम करना पड़ेगा। पहले बैठ के एक प्लान बनाएं। ये टेबल है, इससे बड़ा चार्ट पेपर आप अपने पास रखें, 2 4 10 लोग बैठे वो अपना माइंड लगाएं, क्या जरूरत है हमारी सोसाइटी को? चले इधर से शुरू करना है, आगे फैलता जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे ना। किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या सब लोग कुरान के 5 हकूक पूरे कर रहे हैं? सही आ गया, पढ़ना आ गया, अकीदा ठीक है, तर्जमा आता है, तफसीर आती है, अब इबलाग का मंजर है। एक प्लान बनाएं, आप एक गोल बना के चलें। किस तरीके से वो गोल बनेगा कि जिसकी रोशनी में आप महसूस करेंगे कि आपको एक लाइन ऑफ एक्शन होगी, फिर उसको हासिल कब करना है, फिर उसके ऊपर चलना कैसे है। उसके बाद आप देखिए कि जब आप प्लान अप करते हैं, फिर आपको उसके लिए एक टीम चाहिए। फिर टीम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि जिसकी जो स्किल है उससे बेहतरीन फायदा लिया जाए। हर बंदे को उस काम के अंदर अपना हिस्सा डालना होता है, और उस हिस्से को डालने के लिए उसकी स्किल्स चाहिए होती हैं। आप इसकी मिसाल अपने जिस्म से लें, मेरा आपका जिस्म क्या अकेले काम कर रहा है? खुद नहीं कर रहा ना। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जुबान बोलती है, दिल धड़कता है, मैदा खाना हजम करता है। अगर सारा जिस्म एक ही काम करने लग जाए तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? आंखें के मैं नहीं देखती जी, मैं सिर्फ सुनूंगी, अब ये थक गई हूँ देख देख के। नहीं, पहले अपनी टीम बनाएं, और उसमें स्किल टीम हो। और कौन सी टीम हो कि जिसके अंदर जिस बंदे को कोई काम करना आता है उसको वो काम दिया जाए। काम उनको दीजिए कि जो काम कर सकते हैं, जिनको काम करना आता है। ये फिर उसकी अगली चीज़ है, जिसके अंदर आपका क्या है, प्लानिंग। बैठे सब सर जोड़ के बैठे। अगर आप डिफरेंट इलाकों से आए हैं तो आप चाहते हैं कि इस शहर में इस्लाम आए, ये भी गोल है ना हमारा, कि स्कॉटलैंड के लोग कितने अच्छे हैं, कितने नाइस हैं, सो प्यारे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इनको इस्लाम सिखाना है तो क्या करें? पहले खुद मुसलमानों को इस्लाम सिखाएं। अगर हम मुसलमानों के पास इस्लाम नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम दूसरों को इस्लाम कैसे देंगे? नहीं दे सकते ना। अब इसके लिए आप बैठे, क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है कि जो एक बंदे को इस्लाम के करीब लाए? बस प्लान करें। जब प्लानिंग होती है ना, तो उसके नेक्स्ट चीज क्या होती है? उसके लिए मशवरा, आपस में बाहमी मुशावरत। इसकी इतनी अहमियत है कि आपको पता है कि इस कुरान पाक में एक पूरी सूरत है, सूरत शूरा, कंसल्टेशन, मशवरा करो। सूरत अल इमरान में अल्लाह ताला ने वशाविर हम फिल अम्र के हुक्म से अल्लाह के नबी को मांग किया कि आपस में मशवरों के साथ काम किया करो। अगर एक बंदा कहे ना जो मैंने कह दिया वही होना है, तो नुकसान क्या होगा? वन मैन शो। कुछ लोग बाहर आपको बड़े फाल दिखते हैं, वो कहते हैं मेरे बगैर काम ही कोई नहीं होता, इधर भी मैं, उधर भी मैं, उधर भी मैं। जब गौर करके देखेंगे ना, तो असल में कसूर क्या है कि उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को उनका काम ही नहीं दिया। नुकसान क्या हुआ कि वो काम कर ही नहीं सके। जब किसी को अपने बताया ही नहीं क्या करो, तो वो करेगा क्या? राइट? हम अपने बच्चों से भी बाज़ुकात उन चीज़ों की तवक्कुआत लगा लेते हैं जो उनको हमने नहीं बताई होती, और मियाँ बेचारे से तो हर वक्त ही ये लगाते हैं। हम चाहते हैं हमारे दिल का हाल जानना है, जो हम उनसे सोच रहे इस वक्त बस वो वही करें। तो क्या चीज़ है कि लोगों को आप समझें, मशवरा दें, बैठे कोई काम तन्हा ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है कि इसके ऊपर हम जिस हद तक अमल कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। मैं किसी मुल्क में भी चली जाऊं, स्कूल की कोई चीज़ भी लेनी होती है ना, तो शायद $2 की भी लेने से पहले टैक्स करके साथियों को पूछती हूँ, देखो ये प्लेट है ले ले, ये तार मिल रहा है ये ले ले, जो ज़रूरी चीज़ें पता है कि जो लेनी है, क्योंकि तसल्ली नहीं होती। कोई बंदा खुद पसंदी का इजहार करता है जब हर फैसला वो खुद कर लेता है। बस दफ़ा इतना ज़्यादा उस पर गौर व फिक्र हो जाता है कि फिर उसके बाद गड़बड़ शुरू होती है और वो टाइम नहीं निकल जाता, लेकिन आदत इतनी ज़्यादा मशवरा करने की। फिर अगली चीज़ जो बुनियादी तौर पे किसी भी जगह कामयाबी के लिए लाजमी है, वो क्या है? डिसिप्लिन। आप ये सब कर चुके, मकसद एक बना लिया, एक गोल आपका बन गया, दैट्स इट, गुड। उसके बाद आपने उसके ऊपर एक टीम बना ली, वेरी गुड। बैठ के प्लान बना लिया, वेरी गुड। आपने लोगों को उनके काम बता दिए, एक्सीलेंट, सारा प्लान तैयार है। बाज लोगों को देखे ना तो पेपर वर्क उनका इतना शानदार होता है, बड़े बड़ी फाइलें, रजिस्टर, ऑफिस, चेयर, क्या है जी, माशाल्लाह। अल्लाह जानता है कैसी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला नेकियों के मौके देता है। मैं खुद एक ऐसी जगह गई, मुझे एक साथी थी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमसे हमारा इदारा नहीं संभलता, यहाँ की बात नहीं है, किसी और जगह की बात है। तो खैर, किस्सा मुख्तसर, वो तो हर वक्त जो गम दुख था उनका वो था ही सो था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप एक दफ़ा दर्स रखें, मैं आके देखना चाहती हूँ। अनबिलीवेबल, यकीन करें, मैंने पाकिस्तान में इतना खूबसूरत इदारा नहीं देखा। कि आपके, मेरा ख्याल स्कॉटलैंड में भी आपके पास कोई ऐसी बिल्डिंग हो कि स्टूडेंट्स की चेयर्स के ऊपर हर एक के बिल्ट इन माइक हो, है कोई देखा आपने? कि आप, अगर मैं तो बोल रही हूँ लेकिन आपके पास माइक है, जब सवाल करना है तो आपको वहां से बोलना आसान, वहां मौजूद है, वहां लैंग्वेज का इंतजाम मौजूद है कि साइन लैंग्वेज से किसी को पढ़ाना है। इतनी ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग, अल्लाह अकबर, ये बन कैसे गई? खैर, वो कहानी एक अलग थी। अब क्या, अब सुनाए कर क्या रहे? यकीन करें कि जिसको आप कहे कि बंदा खून के आंसू रोता है कि बिल्डिंग का प्लान इतना खूबसूरत है, अंदर जो वर्किंग प्लान है सिफर, करते क्या है, करना क्या है, क्या गोल क्या, नथिंग, पता ही कोई नहीं, बस क्लास शुरू की, टीचरों के पीछे भागते हैं। मेरा दर्स उन्होंने रखा होता, मैंने कहा मैं आपकी क्लास में ही रहूंगी, एंड पे थोड़ा मुझे मौका दे। खैर, किस्सा मुसिर, मैं गई तो क्लास नहीं हो रही थी, बच्चियां कुछ और पढ़ रही थी। पूछा किधर है, कहती वो हमारी टीचर आज आई नहीं है। तफसीर कराने वाला बंदा, रोज आने वाले बच्चियां, वो बैठी हैं, तफसीर नहीं हो रही। फिर मैंने कहा ऐसा पहले भी होता है? कहती कई दफा होता है, कभी उनका बच्चा बीमार, कभी बड़ा बीमार, अब हुआ क्या? फिर क्या, कहती उस दिन हम कैसेट लगा लेते हैं। तो मैंने कहा फिर आप सिर्फ कैसेट ही लगा लें, फिर बंदों को एक बात की तो आदत हो ना। लेकिन इतनी बेतरतीबियां, इतनी बेकायदगियां, कब क्या होना है? नतीजा क्या निकला कि वो बिल्कुल अब हैंड टू माउथ है, अपने इस सोच से कि खुदा के लिए कोई मेरे सर से ये मुसीबत छाड़े कि मैंने इतनी बड़ी ले ली इस जिम्मेदारी, लेकिन ना मेरे पास टीचर है ना मेरे पास आती है। और फिर चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होती, वर्किंग प्लान नहीं, मैंने कहा आपके एडमिनिस्ट्रेशन टीम कौन है? कहती वो क्या होता है? एकेडमिक टीम में कौन है? कोई पता नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं पता। बस दफा हम नेकी का जज्बा रखते हैं, तलब है, जो पहले कहे कि मकसद है, उम्मत का हाल देखते हैं, रोते हैं, सवाब देखते हैं, जन्नत जहन्नम का ख्याल आता है तो दिल चाहता है कुछ करे, लेकिन काम करना नहीं आता। और आता क्यों नहीं? क्योंकि सीखा नहीं। जिस रास्ते से मैं खुद नहीं गुजरी, मैं आपको कैसे उसका रास्ता दूं? दुख की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा में हालात क्या हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन का काम कर रहे हैं कि वल्लाह ही कसम खा सकती हूँ, बड़े जिम्मेदारी से मैं अपने आप को भी लेती हूँ दीन का काम करने वालों में, कि उनको पहले खुद दीन सीखने की जरूरत है। रंग बिरंगा दीन फैल रहा है इस वक्त। ये जो आज आप UAE और जो अरब कंट्रीज है उसके बारे में एक बड़ा नेगेटिव प्रोपेगंडा मुसलमानों का सुनते होंगे कि जी वो किसी को दर्स नहीं करने देते, जी वहाँ तो कोई जला जाए दर्स नहीं होता। हम खुद सफ़र करते हैं तो वहाँ वाले स्टूडेंट साथी मुझे मैसेजेस भेजते हैं, अब उधर कोशिश की, अब उधर की, तो मतलब इजाज़त नहीं मिलती आम लोगों को, फिर वो प्रोफाइल भेजते हैं ये, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरा मुल्क हो तो मैं तो कभी किसी को ना करने दूँ, पहले दिखाओ कौन सा दीन पेश कर रहे हो। आप कहते हैं कि सूद हराम है, आप कहते हैं नहीं थोड़ा सा ले लो, आप कहते हैं नहीं मस्जिद नहीं बना सकते सूद से, पैसे जमा करो, फंडिंग करो, मस्जिद लेते हैं बगैर सूद की, आप कहते हैं नहीं जी एक घर ले लो, आप कहते हैं इदारा ले सकते हो। मैं ऐसी मस्जिदों को जानती हूँ कि जो फंडिंग करते हैं इस नाम पे कि हमने सूद नहीं लेना, कर्जे हंसना ले लेते हैं जिसको हम बाद में चुकाएंगे, वेरी गुड, उसी मस्जिदों से लोग फतवा लेके आते हैं कि घर का सूद ले सकते हो। क्या आज चूचू का मरबा नहीं है? क्या ये दीन कोई मजाक है? अल्लाह अकबर, जुबान कट जाती है बोलते हुए कि कौन सा दीन देना है। मैं बातें यहाँ कुछ करूं, बाहर जाके आप कुछ और सुना दे, मुझे कैसा लगेगा? कितनी खानदानी लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से होती हैं लोगों में कि वो दीन के काम के अंदर, यानी इस किस्म की बातें, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसने मेरी बात ऐसी की, मैंने ये नहीं की। आज दीन उन लोगों के हाथों में, कि जिसको मिसाल दे दें कि छुरी हाथ में चलानी नहीं आती, उसकी इंटेंसिटी नहीं पती, कहाँ से काटना है, यहाँ से रग काटनी है किधर से, पूरी उम्मत सिसकती तड़पती हुई लाश बनी हुई है इस वक्त, और उसकी वजह हम दीनदार हैं। आप सब तो बेचारे मासूम लोग हैं ना, ये हमारी कल पकड़ होनी है, मेरी पकड़ होनी है। कोई बात करने से पहले अगर मेरा शरह सदर नहीं, मैंने इसकी सुनी ये कह दिया, उसकी पढ़ी ये कह दिया, वो कर दिया, मुझे कहाँ हक पहुँचता है कि मैं अल्लाह के दीन की नुमाइंदगी करूँ? तो इसके लिए इंसान के अंदर ये चीज़ मौजूद हो। और फिर जब काम करने का तरीका होता है फोहड़, इंतहाई बेतरतीबी के साथ काम करने को हम कहते हैं ये दीन का काम है, ना प्लान, ना बैठने की जगह ठीक, गंदगी का ढेर, ताफुन, जो पुरानी टूटी फूटी होती है वो ला के मस्जिद में फेंक जाते हैं, कहते हैं अब तुम संभालो इसको, हम नहीं संभाल सकते। गद्दा पुराना हो गया, नया घर में आ गया, लाके मस्जिदों में रखो। मैं एक ऐसी मस्जिद को जानती हूँ, अल्लाह झूठ ना बुलाए और मुझे मुबालगे से बचाए, कि कुछ दिन हमें वहाँ किसी और जगह पे काम करने के लिए जाना पड़ा। मेरा ख्याल है कि जो मेरे इस वक्त हाफजे में आ रहे हैं, 5 से 6 फ्रिज और फ्रीजर उनके किचन के बाहर पड़े हुए थे, कोई नया कोई पुराना। कैश गली में मोहल्ले में जिसका फ्रिज फ्रीजर खराब होता है वो मस्जिद में दे अंकल जी को, कमरों को देखते हैं तो हम कहते हैं यहाँ बैठ के दीन सीखेंगे, इतने गंदे इतने डिसऑर्गेनाइज कैसे लोगों का हाल होगा। अस्तगफिरुल्लाह, आज कोई तसव्वुर ही नहीं है कि हम दीन का काम किस सलीके से करें। जिसकी जिधर लाठी चली वो कहते मुझे सवाब हो रहा है, सारा दिन पढ़ाती हूँ, इधर उठी उधर गई, उधर गई उधर पढ़ाई, रात को थक के आई, मियाँ साहब चाय बना दें, आज 5 क्लासें ली हैं। व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर प्लान, वेयर डू यू वॉन्ट टू रीच, क्या मसला क्या है। और हम चूके बगैर डिसिप्लिन के दीन सीखते हैं तो फिर बाद में वैसा ही सिखाते हैं, और परेशानी है, इतनी स्टोरीज हैं कि बस मैं अगर आपके सामने शेयर करूं तो हमारा वक्त पूरा हो जाए। लेकिन याद रखें डिसिप्लिन के साथ, वही साथी जो हमारे साथ अब ऑनलाइन पे माशाल्लाह 4 साल के करीब हैं, कि जो लगे हुए, जिनकी कोशिशों से ये लंदन का अब काम शुरू हो रहा है, 22वें पारे तक के 23वें हैं, और अल्लाह उनको इसका अजर उनकी आखिरी, मतलब मैं कहती हूँ कि नस्लों तक देता रहे, कि जो किसी शहर में एक नया काम शुरू कराते हैं वो तो बुनियादें बन जाते हैं। इसके बावजूद वो हर क्लास में से उठने के बाद यही कहते हैं कि उस्ताजा आज जो बात समझ आई है वो नहीं लगी, और इधर वो इल्म से ज्यादा तरबियत सीख रहे हैं। उनको उठने पे भी, चलने पे भी, बैठने पे, हर चीज पे रोका जाता है, और वो इस पे खुश होते हैं कि ये तो हमारी तरबियत हो रही है। तो दीन का काम और है, और डिसिप्लिन तरबियत के साथ करना और चीज़ होती है। इस वक्त जल्दी में नाम जहन में नहीं आ रहा है कि ये इमाम है, वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद के पास 30 दफ़ा गया पढ़ने, एक दफ़ा इल्म लिया और 29 बार मैं उनसे अदब सीखने गया तरबियत के लिए। इमाम मुजाहिद, आपने बड़े मारूफ मुफसिर का नाम सुना होगा, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो के स्टूडेंट थे, उनके बारे में भी आता है कि उन्होंने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से 30 बार कुरान पढ़ा, क्योंकि हर बार एक नया मोती। ये जो किबर भर जाता है ना कि हमें जरूरत नहीं, हम सब पढ़ गए कर लिया, आज आप 4 साल पुराना फैशन का जोड़ा पहनते हैं, तो इल्म तो हर दिन बदलता है। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये चीजें करने के बाद जो अगली चीज बहुत जरूरी है, जिसको अल्लाह ताला ने कहा रुहमा बैनहुम, परसों शायद मैंने 2-3 दिन पहले भी कही ये दर्स इस पे दिया, कि अल्लाह ताला कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, सूरह फत की बिल्कुल आखिरी आयत है, कि नबी सल्लम तो अल्लाह के रसूल थे, लेकिन वल्लज़ीना माहू जो उनकी टीम थी वो कौन थे, रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े रहीम थे, सौ टीम के लोगों का आपस में प्यार, कोई बदगुमानी नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई खराबी नहीं, बल्कि उनके हमदर्द, उसका दर्द उसकी नहीं, मोहब्बत के जज्बे, प्यार, जहां बदगुमानी आ जाती है वहां सांप दौड़ते हैं। बहुत थोड़े दिन बंदा उस जगह पे रहता है जिसके बारे में सिर्फ शक आ जाए, और हमारा एक कॉमन, जिसको आप कहें कि मिजाज बन गया, कौमी मिजाज, वो क्या है कि जरा से इख्तलाफ हुआ कट जाओ, छोड़ दो इनको, अलग करना बच्चे, और किसी सिस्टम के अंदर आने में कुर्बानी देनी पड़ती है, आपका कुछ और दिल चाह रहा है, सिस्टम का तकाजा कुछ और है, अब क्या करते हैं, वो कहते नहीं हम किसी के अंडर रह के नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले रह के करते हैं मौज है मस्ती है, छुट्टी करें कराएं, सारा दिन पढ़ते रहें, सारा दिन बैठे रहें, कुछ भी करें, लेकिन जब आप किसी एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, नहीं। मैं अपनी मिसाल आपको दे देती हूँ कि जब हम अभी भी हर क्लास में, लेकिन नॉर्वे में अभी लंदन में नया जो कोर्स है, टाइम टेबल कोर्स इंचार्ज की तरफ से बन के आता है, और उसमें मिनट मिनट लिखा होता है, एक एक मिनट के हिसाब के साथ टाइम होता है, मुझे जो टाइम उन्होंने दिया है मैं उससे ऊपर नहीं ले सकती, कैन यू बिलीव, वो मुझे टैक्स भेजेंगे 15 मिनट 5 मिनट, और नजर रहती है, बहुत सारा वो लिहाज भी करेंगे मेरा, लेकिन मुझे ये अंदाजा होता है कि अगर आज का मैंने लेसन पूरा ना किया जिसके लिए इस अल्लाह की बंदी ने इतनी मेहनत की है, तो बताइए कि कल क्या ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करके प्लानिंग करेंगे जो हम इतनी लंबी करते हैं। क्यों करते हैं ये प्लानिंग, इसलिए करते हैं कि लोगों को ये काम दिखा सके। एक आखिरी बात, इसको वाइंड अप कर रही हूँ, ये पूरा खुलासा है एक बहुत बड़ी बड़ी चीजों का, कि जिसके अंदर से आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने दीन को काम पे लें। तो जहां रुहमा वही ना हो मैं ना, तो आखिरी चीज जो किसी गिरोह को कामयाब करवाती है वो क्या है, अशिद्दा अलल कुफार, सूरह मायदा में आता है हे अय्युह लज़ीन आमनू मन यरतद्द मिनकुम अन दीनी, कि जो फिरता जाए अल्लाह उन लोगों को ले आएगा जो अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन और इज़्ज़तिन अलल काफिरीन, टीम के लोग दीन का काम करने वालों को अपने रूल्स पे फर्म होना चाहिए, यानी कहीं कोई अहद शिकनी को रूल्स को तोड़ने की बात आ जाए तो उनको उसके ऊपर सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मिसाल दे देती हूँ, एक बंदे को आप रिसेप्शन पे बिठाते हैं, रूल्स दे के बिठाया ना, तरबियत दे के बिठाते हैं, साथियों की फिर ट्रेनिंग करनी ज़रूरी होती है, ये वो पहली चीज़ों के अंदर आता है। अब वो कह दे अच्छा कोई बात नहीं ना, इट्स ओके। मिसाल है कि कैंटीन है, हम 1 पाउंड का एक बर्गर बेच रहे हैं, मिसाल देती हूँ, जो लाया जिसका सदका जारिया, जिसने मेहनत की उसका फ़ायदा जाना चाहिए स्कूल को, मिसाल है ना। अब कैंटीन इंचार्ज का काम क्या है कि जो पैसे देता जाए वो उसे ले ले, और बाद में क्या, चल तू तो मेरी बहन है ना तू खा ले, खुद डाल दें वो अच्छी बात है, लेकिन बेकायदगी क्या होती है कि रूल्स में इंटरफेरेंस करना। चलो जा, कहे के क्लास में बच्चा लेके नहीं बैठ सकते तो कुछ लोग कोई नहीं पीछे बैठ जाते हैं, यानी किसी भी जगह जब आप दीन के नाम पे कोई काम करें और ख़ास तौर पे इस्लाम का नाम लेकर करते हैं, तो फिर उसमें आपके जहन में ये हमेशा रहे कि हमने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। जिसको मैं एक वाक्य से सिर्फ जोड़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आजकल फिर तो चली आते नबूवत के सेशंस ले रहे हैं नॉर्वे वालों के साथ, तो उसमें दोबारा ये बात रिवाइज हुई कि मक्का कभी फतह ना होता अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू सुफियान और उस ग्रुप की तरफ से वादा शिकनी ना आती। आप अल्लाह के नबी की पर्सनैलिटी पढ़ लें, आप मेरी सारी बातें जितनी मैंने आपसे कही ना इसको भूल जाएं, आज एक नियत करके उठें कि सीरत पढ़नी है, और कौन सी सीरत, अमली सीरत। अभी इस साल जो हमारा नॉर्वे का नया कोर्स शुरू हुआ है उसके साथ अल्लाह ताला ने एक नई काम करवा दिया, और वो क्या था कि हम उसको पहले 15 दिन में उनको सीरत का एक क्रैश कोर्स करवाया। यकीन करें मुझे लगा इससे बेहतरीन वक्त ही नहीं है सीरत पढ़ाने का, जो अल्लाह के नबी के रास्ते की मुश्किलात और दीन फैला, अब इनके ऊपर भी वो सारी मुश्किलात आने वाली हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बेग बेग काम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब के ऊपर इसको आसान करे, और जो भी जिम्मेदारी में पड़ता है अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे।